लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर, हम आपसे समुद्री तटों पर कठिन परिश्रम करने वाले तथा वहीं पर जीवन यापन करने वाले समस्त नाविकों, मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना से उन्हें समर्थन मिले। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव जीवन में मेहनत का सार दो जून की रोटी कमाने से है। यदि हम अपने जीवन पर गौर करें तो हमारी शिक्षा, हमारे कार्य, हमारी मेहनत, सारी चीजों का संबंध हमारे पेट की भूख से है। हम अपने पेट की भूख मिटाने, अपने जीविका उपार्जन हेतु अपने कार्यों को करते हैं। माता पिता के रूप में हम अपने जीवन में अपने कार्यों को करते हैं, जिससे हम अपने परिवार की जीविका चला सकें। श्रोताओं, यह हमारी पेट की भूख है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। 18वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का संदर्भ मानवीय जीवन की शारीरिक भूख, प्यास और उसकी तृप्ति है। यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में अपने पास आने वालों के लिए, अपनी शिक्षा सुनने वालों की चिंता करते हुए उनके लिए खाने का प्रबंध करते हैं और इस चमत्कार के द्वारा वे हमें अपने प्रेम का प्रमाण देते हैं कि वे किस तरह हम प्रत्येक की सुधि लेते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें कि जीवनदायी भोजन जो हमारे लिए स्वयं मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त हैं, हम उनके लिए अपने को कितना भूखा और प्यासा पाते हैं।
ईसा यह समाचार सुनकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे।
श्रोताओ, मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के सुमधुर वचन जो जीवन की रोटी बनकर हमारे लिए स्वर्ग से उतरे, हमारे जीवन की शारीरिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक भूख प्यास को बुझाएं, जिससे हम अपने जीवन को उनके खातिर जीने के योग्य बन सकें।
जीवन जिसने दिया, ये जीवन है उसका।
श्रोताओं, नबी इसाइस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के पास आने का आह्वान करता है। नबी हमें जीवनदाता ईश्वर के सानिध्य में आने का निमंत्रण देते हैं। जो प्यासे हैं पानी के पास चले आएं। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तब भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। श्रोताओ, शारीरिक भूख की तृप्ति हेतु हमें उपयुक्त वस्तुओं की कीमत अदा करनी होती है। हमें अपने जीवन की जरूरतमंद चीजों को खरीदना पड़ता है और उन्हें खरीदने के पहले हमें अपने जीवन की शक्ति और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हम अपने रोज दिन के जीवन में खून पसीना बहाते हैं जिससे हम धन कमा सकें। अपनी कड़ी मेहनत से कमाए गए धन को हम यत्न के साथ रखते, उन्हें फिजूल खर्च नहीं करते वरन सोच समझ कर जरूरी चीजों को खरीदने में करते हैं। श्रोताओ, वहीं आज ईश्वर हमें अपनी उदारता में मुफ्त में खाने पीने की चीजों को प्रदान करते हैं। वे हमें अपने पास आने को कहते हैं और अपनी बातों को ध्यान से सुनने का निर्देश देते हैं जिससे हमारी आत्मा को नव जीवन मिले। यदि हम ईश्वर के इन वचनों को अपने जीवन में देखें और थोड़ा चिंतन करें तो हम पाएंगे कि जीवनदाता ईश्वर ने हमें कितनी मूल्यवान चीजों से भर दिया है। हमारा जीवन जिसकी मांग हमने नहीं की, ईश्वर ने हमें इसे अपने प्रेम में दिया है। हमारे माता पिता, हमारी संतानें, हमारे इष्ट कुटुंब, हमारे सगे संबंधी और हमारे मित्रगण जिनके द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम का एहसास करते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए ईश्वर प्रदत्त धन दौलत हैं। इनके बदले हम ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं सिवाय अपनी कृतज्ञता रूपी सहृदयता के। लेकिन इतने सारे वरदानों से और कृपा दानों से संपन्न रहने के बावजूद हम बहुधा अपने दैनिक जीवन में सदैव कुड़कुड़ाते और ईश्वर के प्रति शिकायत करते हैं। जीवन की छोटी मोटी कमियां और एक दूसरे के प्रति हमारी गलतियां जिन्हें छोड़ने के बदले हम अपने में कसकर पकड़ लेते, जो हमारे लिए कठिनाइयों और मुसीबतों का एक पहाड़ खड़ा कर देती हैं। श्रोताओ, यह हमारी मानवीय कमजोरी और हमारी पापमय स्थिति को बयां करती है। इस भांति देखा जाए तो मानव स्वयं अपने असंतोष स्वभाव और व्यवहार के कारण अपने लिए दुखों की एक पोटली तैयार कर लेता है। श्रोताओ, 18वें रविवार के सुसमाचार में यीशु हमें कहते हैं, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हें नव जीवन मिलेगा। यीशु का हमें अपने पास बुलाना और उनकी शिक्षा को ध्यान से सुनने का अर्थ हमें अपने को उन्हें उदारता में पूर्ण रूपेण समर्पित करना है। इसे हम रोटियों के चमत्कार सुसमाचार में पाते हैं। यीशु को 5 रोटियां और 2 मछलियां दी गईं, जो किसी लड़के के पास थी, जैसे कि संत योहन का सुसमाचार हमें बतलाता है। उन थोड़ी सी खाने की चीजों के द्वारा यीशु एक बड़े समूह को खिलाते हैं। उस लड़के ने अपने खाने की सारी चीजों को यीशु को दे दिया, जिनके द्वारा यीशु चमत्कार करते हैं। श्रोताओ, आज का प्रभु संदेश हमारे लिए यही है, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वे हमारे जीवन की खुशियाँ, हमारे जीवन की तकलीफें, चिंताएं, मुसीबतें और बीमारियां ही क्यों ना हों, यीशु हमें उन्हें अपने पास लाने को कहते हैं जिससे वे उनके द्वारा हमारे लिए चमत्कार कर सकें। यह विश्वास में उदारता पूर्वक अपने जीवन की सारी चीजों को यीशु के हाथों में समर्पित करना है, जो हमारी सुधि लेते और हमें अपने प्रेम से भर देते हैं। अपने को उनके हाथों में चढ़ाना हमें सभी तरह के भूख प्यास से तृप्ति प्रदान करती है। हम उनमें नव जीवन को पाते हैं। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने बेटे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के वचनों को सुनने और उन्हें हृदय में संजोकर रखने हेतु मदद करें, जिससे हम अपनी उदारता में दूसरों के लिए नव जीवन का स्रोत बन सकें। जीवन, 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 जीवन,
करे सच नमन उसका जीवन जिसने दिया ये जीवन है हमारा है जीवन आधार उसकी कृपा है अनंत अपार प्रभु हमारा है जीवन आधार उसकी कृपा है अनंत अपार वो जीवन दे उसकी करे हम जय जय का जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका जीवन जिसने दिया।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सेंट पापा फ्रांसिस ने फादर फाबियो सलेर्नो से अपना निजी सचिव बनने का आग्रह किया है। फादर फाबियो वर्तमान में वैटिकन राज्य सचिवालय में विदेशों के साथ संबंध विभाग में कार्यरत हैं। दूसरी ओर मोनसिनियोर गाइड जिन्होंने अप्रैल 2014 में सेंट पापा फ्रांसिस के निजी सचिव का कार्यभार संभाला था वे अपनी सेवा समाप्त कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने इस बात की पुष्टि शनिवार को दी। उन्होंने बतलाया कि जैसा कि परमाध्यक्ष रोमी कार्यालय की अन्य भूमिकाओं में भी ऐसा ही है यह सामान्य रूप से सेवा काल की समाप्ति है जैसा कि संत पापा फ्रांसिस चाहते हैं। ब्रूनी ने कहा कि मोनसिनियोर गाइड अपनी भूमिका को मानव बंधुत्व के लिए उस समिति के सदस्य के रूप में जारी रखेंगे। मोनसिनियोर गाइड का स्थान फादर फाबियो सलेर्नो लेंगे। फादर फाबियो सलेर्नो का जन्म 1979 को इटली के कतंजारो में हुआ था। उन्होंने रोम के परमधम पीठ लातरन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। येसु समाज के संस्थापक संत इग्नासियस लोयला के पर्व दिवस के उपलक्ष्य में 31 जुलाई को धर्म समाज के सुपीरियर जनरल फादर अर्तुरो सोसा ने एक चिंतन प्रस्तुत किया। इस साल इस चिंतन में मन परिवर्तन के आयाम पर प्रकाश डाला गया है। फादर सोसा ने लिखा, संत इग्नासियस की याद करते हुए एवं उनका पर्व मनाते हुए यह एक सुंदर अवसर है इग्नेशियन वर्ष पर चिंतन पेश करने का जो अगले साल मई महीना में शुरू होगा। इग्नेशियन वर्ष 2021 से 2022 समय का पूरा फायदा उठाने का अवसर दे रहा है। यह एक अपील है कि हम प्रभु को अपना मन परिवर्तन करने दें। हम कृपा मांगे कि प्रभु द्वारा हम नवीकृत किए जाएं। हम एक नए आंतरिक और प्रेरितिक उत्साह जगाना चाहते हैं, एक नया जीवन और प्रभु का अनुसरण करने के लिए नए रास्ते पर चलना चाहते हैं। यही कारण है कि हमने इस साल के लिए जो आदर्श वाक्य चुना है वह इस प्रकार है, ख्रिस्त में सभी चीजों को नए रूप में देखना। सुपीरियर जनरल ने लिखा, हम जानते हैं कि उसे आत्मसात करने के लिए हम प्रत्येक को अपने समुदाय संस्थान एवं प्रेरितिक कार्यों में बदलाव लाने की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन एवं मिशन में सच्चा परिवर्तन आए। फादर सोसा ने उन सभी लोगों को संबोधित किया है जिनसे प्रेरित क्षेत्र में मुलाकात होती है। उन्होंने कहा, इग्नेशियन वर्ष में हम उस मूल अनुभव को साझा करने की उम्मीद करते हैं जिसके आधार पर धर्म समाज की प्रेरित इकाई ख्रिस्त में सभी चीजों से मेल मिलाप करने के मिशन में सहभागी होती है। आप में से कई लोग इस प्रेरणा के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, इस कार्यक्रम के साथ जो यीशु समाज को जीवन देता है। मैं इस कृपा हेतु आप सभी के उत्साह एवं सामिप्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम इग्निशन वर्ष का लाभ उठाना चाहते हैं, ताकि हम प्रत्येक जन में पौत्र आत्मा के कार्य को देख सकें। युवाओं को संबोधित कर फादर सोसा ने कहा कि हम आपको साथ देना सीखना चाहते हैं। आप प्रत्येक अनूठे हैं और एक खास योजना के साथ जन्म लिए हैं। संत इग्नासियस ने अपने जीवन के अर्थ को खोजने के लिए संघर्ष किया। आप भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं।
एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मानागुआ के महागिरजा घर में आग लगाए जाने के कारण एक प्राचीन क्रूस जल गया। कार्डिनल ब्रेनस के लिए यह एक आतंकवादी कार्य है। निकारगुआ के कैथोलिक समुदाय बहुत दुखित है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार अपने चेहरे को ढके हुए एक व्यक्ति ने महागिरजा घर के अंदर ख्रिस्त के पवित्र लहू प्रार्थनालय में एक मोलोटोव कॉकटेल फेंक दिया, जिससे आग लग गई और जिससे अन्य मूल्यवान चीजों के साथ लगभग 4 शताब्दियों का एक क्रूस भी जल गया। आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले से वहां के कैथोलिक समुदाय को गहरा दुख पहुंचा है। महाधर्म प्रांत की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह एक पूर्व नियोजित कार्य है, जो एक विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा ही किया गया है। क्रूस को एक अज्ञात उपकरण द्वारा पूरी तरह से जला दिया गया, जैसा कि कुछ ने कहा है, क्योंकि घटना के क्षेत्र में मोमबत्तियां नहीं थीं, इसलिए एक आकस्मिक आग की परिकल्पना को खारिज किया गया है। महाधर्माध्यक्ष ने इसे एक निंदनीय कार्य कहा है। इससे सभी कैथोलिकों को गहरा अपमान और दुख पहुंचा है, क्योंकि निकारागुआ के सभी ख्रिस्तीय इस क्रूस की श्रद्धा और सम्मान करते थे। अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान संत पॉल जॉन पॉल द्वितीय ने फरवरी 1996 में महागिरजा घर में ख्रिस्त के पवित्र लहू प्रार्थनालय के क्रूस का दर्शन कर कुछ देर प्रार्थना की और वहां उपस्थित विश्वासियों से कहा, आप मानागुआ महाधर्म प्रांत के केंद्र में इस प्रार्थनालय को चाहते थे, जहां 3 शताब्दियों से पहले स्पेन से लाए गए क्रूस को रखा जाए। आप प्रभु येसु के क्रूस और उन पर बहाए गए पवित्र लहू की भक्ति के साथ श्रद्धा करते हैं। इसी क्रूस पर असहाय संकट के साथ प्रभु ने मौत को स्वीकार किया, पाप और मृत्यु पर विजय पाई, पुनर्जीवित होकर हम में खुशी और आशा का संचार किया। हाल के महीनों में निकारागुआ महागिरजाघर में कई बर्बरतापूर्ण हमले हुए हैं। गिरजाघरों के संदूकों से पवित्र सैक्रामेंट को जमीन में फेंक दिया गया, गिरजाघरों की दान पेटियां चुराए गए, कीमती वस्तुएं एम्पलीफायरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। मध्य अमेरिकी देश की सामान्य स्थिति के एक नाजुक चरण में कैथोलिकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। फिलीपींस में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार की योजनाओं की घोषणा के बाद धर्माध्यक्ष रूपेर्तो संतोस की उम्मीद है कि अध्ययन पारदर्शी, गैर पक्षपातपूर्ण और अद्वितीय नहीं होगा। पिछले हफ्ते फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने एक राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा नीति को अपनाने के लिए एक कार्यकारी समिति बनाने हेतु आदेश जारी किया। इस आदेश को बुधवार को सार्वजनिक किया गया। फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे अधिक बिजली की लागत है और बिजली की आपूर्ति भी अनिश्चित है। परमाणु ऊर्जा इन समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है, लेकिन अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देश में सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।